आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय पर्यावरण। ये कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान का 17वां अध्याय है। बच्चों, पर्यावरण का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने अपने आसपास खेत देखे होंगे, खेतों में लहलहाते फसलों को देखा होगा और पेड़ पौधे भी देखे होंगे। कई पेड़ ऐसे देखे होंगे जिनमें कोई फल लगे होंगे, या फिर पशु पक्षियों को देखा होगा, या फिर जो आपके साथ रह रहे जो जीव जंतु हैं, या फिर कोई और इंसान है। आप सभी लोग मिलकर पर्यावरण को बनाते हैं, आप सभी लोग पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। तो वो सभी चीज़ें जो आपके आसपास प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं, मतलब कि नेचर ने जो आपको दी हैं, प्रकृति ने जो आपको दी हैं, वो सभी की सभी पर्यावरण का हिस्सा होती हैं। उनमें से आप भी आते हैं, क्योंकि आप भी प्रकृति के ही देन होते हैं। आज के अध्याय में हम पर्यावरण के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि इंसान जो है वो धीरे धीरे समझना भूल गए हैं कि पर्यावरण का संरक्षण करना, यानी पर्यावरण को बचाना, साफ सुथरा रखना भी हम इंसानों का ही काम है। हम लोगों ने हमारे आसपास की जो पर्यावरण है उसको इतना दूषित कर लिया है कि इसकी वजह से अब हम लोगों को ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं जो हमें खुद से समझनी चाहिए थी। हम लोग इस पर्यावरण का हिस्सा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे स्वच्छ रखें। हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं उनके लिए हमें इसे स्वच्छ रखना पड़ेगा, खुद के लिए भी स्वच्छ रखना पड़ेगा, और जो आने वाली जनरेशन है, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना पड़ेगा। तो इस अध्याय में हम यही सब बातें पढ़ेंगे कि पर्यावरण को हमारे किन किन हरकतों से, हमारे किन किन कार्यों से नुकसान हो रहा है और हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े योगदान दिए पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, ताकि हमें भी उनसे कुछ प्रेरणा मिल सके। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पेज नंबर 179 में आपको एक टेबल बनाकर दी गई है। इसमें आपको क्या करना है कि आपने अपने आसपास क्या क्या चीज़ें कभी देखी हैं वो आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है कि वस्तुओं में आपने मिट्टी देखा होगा, पीपल देखा होगा, पत्थर देखे होंगे, पेड़ पौधे देखे होंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको इस टेबल में, इस सारणी में भरनी है, और आपने क्या क्या क्रियाओं को अनुभव किया है वो भी आपको लिखना है। क्रियाएं मतलब जैसे आपने देखा होगा बारिश के वक्त, आप बारिश देखते हो, बारिश में कैसे, जैसी ही बारिश होती है तो जितना धूल होता है, जितनी मिट्टी, जितना प्रदूषण होता है, ऐसा लगता है वो सब हट जाता है, और पर्यावरण बारिश के बाद कितना साफ सुथरा हो जाता है। और कई बार आपने बारिश के वक्त ओले पड़ते हुए भी देखा होगा, तो यही सब आपको यहाँ पर लिखना है। और साथ में आपने क्या क्या पेड़ पौधे देखे होंगे उनके बारे में भी आपको लिखना है। जैसे आपके गांव के इलाके में आपने देखा होगा कई धान के खेत देखे होंगे, चाहे गेहूं के खेत देखे होंगे, या फिर कोई और फसलें देखी होंगी, तो ये सब भी पेड़ पौधे की कैटेगरी में ही आते हैं, उसी की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद फलों के पेड़ भी आपने देखे होंगे, आम के, केले के, गन्नों के पौधे देखे होंगे, तो वही सब आपको इस टेबल में, इस सारणी में भरना है। उसके बाद बच्चों, हमें यहाँ पर सीखना है कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, ठीक है, पर्यावरण का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, जल, वायु एवं अन्य पदार्थ जिन्हें हम देख अथवा अनुभव कर सकते हैं, वो सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मतलब आपके आसपास जितनी भी जो चीज़ें हैं, जो पर्यावरण में हैं, वो क्यों हैं, वो प्रकृति ने बनाई हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपके आसपास जो प्रकृति ने बनाकर आपको दी हैं, वो सभी की सभी पर्यावरण का हिस्सा होती हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वो भी प्रकृति ने ही बनाए हैं, नेचर ने बनाकर दिए हैं। चाहे जो जीव जंतु होते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से ही पैदा होते हैं, तो ये भी प्रकृति का ही अंग हैं। उसके बाद जो जल होती है, वायु होती है, मिट्टी होती है, पत्थर, पहाड़, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी की सभी पर्यावरण का ही हिस्सा होती हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हमारे आसपास जो आवरण है, जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है, उसे पर्यावरण कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके आसपास जो आवरण है, आवरण का मतलब होता है बच्चों वस्त्र, यानी कि जो कपड़े आप पहनते हो, तो आपके आसपास जो वस्त्र है, मतलब यहाँ पे वस्त्र आपको ऐसे ही समझाने के लिए बोला गया है कि जो आपके आसपास जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है, तो उसी को कहा जाता है पर्यावरण। अब आप देख सकते हो कि पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, जल है, वायु है, चाहे मिट्टी है, पहाड़ हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो उसमें कोई चीज़ खाने की नहीं उगेगी, फल नहीं उग पाएंगे, सब्जियां नहीं उग पाएंगी, कोई फसल नहीं उग पाएगी, तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे, तो हमारा जीवन वैसे भी सफल नहीं हो पाएगा। अगर जीव जंतु नहीं होंगे, मान लो हम जो इंसान हैं वो काफ़ी सारे इंसान कुछ मछलियों को या फिर कुछ मीट को, अंडों को, ये सब चीज़ें भी खाते हैं जो जीव जंतु से मिलती हैं, तो अगर वो भी नहीं होंगे तो भी जीवन मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। चाहे अगर जल नहीं होगा, तो जल तो आपको पता है कि जल तो हमारे जीवन का स्रोत होता है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो जीवन कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगा। और वायु, वायु तो आपको पता है कि वायु के बगैर तो हमारा जीवन मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी वायु में तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और हमारी वहीं मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो सभी चीज़ें पर्यावरण में मौजूद होती हैं, ये क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं ताकि ये हमारे जीवन को मुमकिन बना सके, हमारे जीवन को पॉसिबल बना सके और हमारे जीवन को और आसान बनाने के लिए पर्यावरण में ये सभी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो धरती पर जीवन इसीलिए मुमकिन हो पाया है, इसीलिए पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पर्यावरण जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमारी रक्षा करता है। बाहर की कितनी भी जो परेशानियाँ आती हैं, सूरज से निकलती हुई जो रोशनी होती है उसमें काफ़ी सारी हार्मफुल किरणें होती हैं, नुकसान करने वाली किरणें होती हैं सूरज की, उनसे हमारा पर्यावरण हमें बचाता है। चाहे कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उनसे भी हमारा पर्यावरण हमारी रक्षा करने में मदद करता है। तो पर्यावरण के होने की वजह से ही धरती पर जीवन मुमकिन हो पाया है, पॉसिबल हो पाया है। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पर पेज नंबर 180 पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको एक चित्र भी दिखाया गया है, चित्र 17.1। इसमें आपको बस ऐसे ही एक प्यारा सा पर्यावरण का चित्र दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हो इंसानों को भी दिखाया गया है, जानवरों को, पहाड़ों को, पेड़ पौधों को, हरियाली को, सबको दिखाया गया है। अब हमें पढ़ना है बच्चों पर्यावरण के प्रकार, इसका मतलब टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि कितने अलग अलग प्रकार के पर्यावरण होते हैं, अब हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पर्यावरण को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा जाता है, दो प्रकार के होते हैं पर्यावरण। पहला होता है सामाजिक पर्यावरण और दूसरा होता है प्राकृतिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण को इंग्लिश में सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं और प्राकृतिक पर्यावरण को नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो देखो बच्चों, सामाजिक पर्यावरण का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम कोई इंसान है मान लो, तो उसके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ उसके किस तरीके के संबंध हैं, ये बताता है कि उसका समाज कैसा है, मतलब उसका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे मान लो आप हैं, आप कोई बच्चे हो, आपके अपने माता पिता से किस तरीके के संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं या बुरे संबंध हैं, या फिर आपके अपने दोस्तों के साथ में किस तरीके के संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं या बुरे संबंध हैं, आप उनसे अच्छे से पेश आते हो या बुरे तरीके से पेश आते हो, या फिर आप अपने टीचर्स या फिर जो आपके अध्यापक हैं उनसे किस तरीके से आप बात करते हो, कितनी शालीनता से, मतलब कितने डिसिप्लिन आप रहते हो, कितने अच्छे से उनसे पेश आते हो, ये सब चीज़ें बताता है कि आपका सामाजिक पर्यावरण किस तरीके का है, आपका परिवेश, मतलब आपके आसपास के लोग किस तरीके के हैं, ये बताता है। तो मान लो आप अगर अच्छे परिवेश में, अच्छे लोगों के साथ में रहते होगे तो आपके अंदर भी अच्छा व्यवहार ही आएगा, लेकिन अगर आप अपने आसपास के लोगों को, जैसे अगर वो बुरा व्यवहार करते हैं ये देखोगे, तो आप भी उसी तरीके का व्यवहार करने लगते हो। तो आपका सामाजिक पर्यावरण किस तरीके का है ये कोई भी बहुत आसानी से पता लगा सकता है आपके व्यवहार को, आपकी आदतों को देख करके। इसलिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छी आदतों को ही ग्रहण करना चाहिए। अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें बुरी आदतें हैं तो आप उन बुरी आदतों को वहीं छोड़ दो, आपको उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं अपनाना चाहिए, सिर्फ अच्छी आदतों को ही अपनाना चाहिए। जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, आप एक विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो, आप एक आदर्श विद्यार्थी, एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको अपने माता पिता की कदर करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, अपने अध्यापकों का आदर करना चाहिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने दोस्तों से अच्छे से पेश आपको आना चाहिए, आपको गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऊँची भाषा में बात नहीं करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए और छोटों से स्नेह करना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपकी ज़रूरत है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, और साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि कोई किसी का नुकसान ना करे। आपको अपने आसपास के पर्यावरण की, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, कमज़ोर लोगों की भी आपको रक्षा करनी चाहिए। आपको अपनी सोच को हमेशा अच्छा सोच बनाकर रखना चाहिए, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। आपको अच्छा सोचना चाहिए हमेशा, कभी भी ये मत सोचो कि ये बुरा हो जाएगा वो बुरा हो जाएगा, हमेशा अच्छा सोचो कि अच्छा करने वाले के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये सोचकर अगर काम करोगे तो आप अगर किसी के साथ कुछ अच्छा करोगे, कुछ भला करोगे किसी का, तो अगले दिन आपका भी कोई ना कोई कुछ भला करेगा, ये हमेशा होता है। गुड अगर आप करोगे किसी के साथ तो आपके साथ भी गुड ही होगा। उसके बाद दूसरा है नेचुरल एनवायरनमेंट, इसका मतलब है प्राकृतिक पर्यावरण। आपके आसपास जो भी प्रकृति ने चीज़ें दी हैं, मतलब कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, जल या फिर मिट्टी, ये सभी के सभी प्रकृति ने दी हैं, तो ये सभी बनाती हैं प्राकृतिक पर्यावरण को। पर्यावरण बच्चों दो चीज़ों से मिलकर बनता है मेनली, मतलब मुख्यतः ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है अजैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक। अजैविक घटक को इंग्लिश में एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, जैविक घटक को बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अजैविक मतलब कि ऐसा जिसमें जीवन ना हो, जैविक वो जिसमें जीवन हो। तो हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो अजैविक कंपोनेंट्स हैं या फिर जो अजैविक घटक हैं, ये वो घटक हैं जिनमें जीवन नहीं होता लेकिन फिर भी ये पर्यावरण का हिस्सा हैं। जैसे कि जो वर्षा होती है, वर्षा में जीवन नहीं होता लेकिन ये पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। हिमपात यानी कि जो बर्फ़ गिरती है वो भी एक अजैविक चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसमें जीवन नहीं है लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। ओला जो पड़ता है वो भी अजैविक है, इसमें जीवन नहीं है। ओस या फिर जो हवा है, चाहे जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी या फिर जो तापमान है, ये सभी चीज़ें भी ऐसी हैं जिनमें जीवन नहीं होता लेकिन ये सभी की सभी जो पर्यावरण की हिस्सा हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मतलब इनका एक बहुत ही ज़रूरी किरदार होता है जिसको ये पर्यावरण में प्ले करती हैं, इसको निभाती हैं। साथ में मिट्टी जो होती है वो भी एक अजैविक घटक है। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे जैविक घटकों की। जैविक घटक का मतलब वो जो चीज़ें हैं जो पर्यावरण का हिस्सा हैं जिनमें जीवन मौजूद है। अब जीवन किन में मौजूद है, जो वनस्पति होती है मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जीवन मौजूद होता है, जीव जंतु जो होते हैं उनमें भी जीवन मौजूद होता है, चाहे हम लोग, हम इंसान भी तो जीव जंतु ही हैं, हमें भी जीवन मौजूद है और हम भी पर्यावरण का ही हिस्सा हैं, तो हम जैविक घटक के अंदर आएंगे। और साथ में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, ये सभी भी पर्यावरण का हिस्सा होती हैं और ये जैविक घटक के अंदर में आते हैं। आप लोगों को माइक्रोस्कोप तो आपने देखा ही होगा, माइक्रोस्कोप क्या करता है, अगर कोई चीज़ बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि हमें उसको, हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, तो वो क्या करता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ना, माइक्रोस्कोप की मदद से हम उस चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप में लेंस लगी होती है, इसलिए हमें जो बैक्टीरिया हमारे हाथ वगैरह में हमें आँखों से नहीं दिखते लेकिन माइक्रोस्कोप से वो हमें दिख सकते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको प्रोड्यूसर या फिर उत्पादक कहा जाता है, जीव जंतुओं को उपभोक्ता या फिर कंज्यूमर कहा जाता है, और सूक्ष्म जीवों को डिकम्पोजर या फिर अपघटक कहा जाता है। अब पेड़ पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूरज की जो रोशनी होती है उसकी मदद से वो अपना खाना बनाते हैं और उसके बाद हम उन पेड़ पौधों को खा लेते हैं। तो पेड़ पौधों ने क्या किया, पेड़ पौधों ने हमारे लिए फल पैदा किए, प्रोड्यूस किए या फिर उत्पादित किए, और हमने क्या किया, हमने उसको खा लिया, तो हम हो गए उपभोक्ता क्योंकि हमने उसको, उसका उपभोग, उसको ले लिया, हमने कंज्यूम कर लिया उसकी चीज़ को, उसके फलों को या फिर उसकी पत्तियों को, जो भी चीज़ें हैं पेड़ पौधों की उसको हमने कंज्यूम कर लिया, इसलिए हम हो गए उपभोक्ता। तो क्योंकि हम इंसान या फिर जो जीव जंतु होते हैं वो पेड़ पौधों से पैदा की गई चीज़ों का उपभोग करते हैं, इसलिए हमें उपभोक्ता कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहते हैं या फिर डिकम्पोजर, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मान लो आपके जो पेड़ पौधे का हिस्सा हो गया जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बीज हो गए ऐसे जो ख़राब हो गए हैं, चाहे जो कुछ ऐसे हिस्से हैं फलों के जो आप खाना नहीं चाहते आप फेंक देते हो, तो वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, उसको सड़ा करके उसको पचा देते हैं, उसको उस क्रिया को कहा जाता है डिकम्पोज करना, अपघटन करना। इसका मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो हमारी जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है अपघटक। डिकम्पोज कर देते हैं का मतलब ये है कि उसको वो खाद में परिवर्तित कर देते हैं, जो भी आपके प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करना उसको वो खाद में बदल देते हैं, इसको कहा जाता है डिकम्पोज करना। अब देखो बच्चों, आप लोग कभी मान लो सफ़ेद एकदम शर्ट पहनकर कभी बाहर गए होगे तो आपने ये देखा होगा कि उस पर हल्का हल्का कुछ काला काला सा चढ़ जाता है, मैला हो जाता है कहते हैं, जब आपका शर्ट जो सफ़ेद शर्ट है जब वो मैला हो जाता है तो आप सोचते होगे कि ये मैला कैसे हो गया, मैंने तो इसे गंदा किया ही नहीं और ये खुद ब खुद मैला हो गया। तो वो मैला इसलिए हो जाता है बच्चों क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है, हमारे आसपास की जो हवा है उसमें इतना धुआं फैल चुका है कि आपकी शर्ट जो होती है वो गंदी हो जाती है। अब आप सोचोगे कि ये धुआं किस चीज़ का है, तो आप लोगों ने अपने आसपास जो गाड़ियां वगैरह चलती हैं उनको देखा होगा, उनमें उनके पीछे आपने धुआं निकलते हुए भी देखा होगा। तो जब गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल होता है ना बच्चों, तो उनसे पीछे की जो गाड़ियों का पीछे का हिस्सा होता है उसमें से धुआं निकलता है, और वो जो धुआं होता है वो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है, पर्यावरण में गंदगी फैलाता है। इसी के वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो वायु है वो भी दूषित हो जाती है, इसीलिए आपकी जो शर्ट है सफ़ेद शर्ट वो मैली होने लगी है, या फिर हमारी सांस लेने में जो तकलीफें आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हमारी जो वायु है वो प्रदूषित हो चुकी है। तो अब हमें पढ़ना है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। तो देखो बच्चों क्या होता है, हमारे जो आसपास का पर्यावरण है जब उसमें अनचाही चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हम नहीं चाहते कि हो और ना हमारा पर्यावरण चाहता है कि हो, जब ऐसी चीज़ें हवा में या मिट्टी में या पानी में मिल जाती हैं और फिर उसके बाद वो मिट्टी को, पानी को और हवा को ख़राब करने लगती हैं, तो कहा जाता है कि पर्यावरण में प्रदूषण हो गया है। देखो आजकल क्या हो रहा है, हर लोग जो होते हैं वो दूसरे देशों की नकल करना चाहते हैं, सभी के सभी प्रगति करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सब ये भूल रहे हैं कि प्रगति करने के साथ साथ उन्हें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रगति करने का कोई फ़ायदा ही नहीं अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो, क्योंकि अगर पर्यावरण रहेगा ही नहीं तो इंसानों का जीवन मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमारी जो वायु है वो दूषित हो जाएगी, इतनी प्रदूषित हो जाएगी कि हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, तो हमारी मृत्यु हो जाने के बाद इस प्रगति का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम इंसानों को प्रगति करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करते रहना चाहिए, हमें उसे इतना ख़राब नहीं कर देना चाहिए कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ भी अच्छा ना बचे। हमारी ये जिम्मेदारी होती है हर एक जनरेशन की, हर एक पीढ़ी की, कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा पर्यावरण, एक अच्छा वातावरण छोड़कर जाए। अब एक अच्छा वातावरण या एक अच्छा पर्यावरण किसे कहते हैं, जब हमारे पर्यावरण की हर एक चीज़ संतुलन में हो, सब कुछ ठीक से हो, अच्छी वायु हो, स्वच्छ जल हो और स्वच्छ मिट्टी हो, तब हम कहेंगे कि हमारा जो पर्यावरण है वो हेल्दी है, वो स्वस्थ है। पर्यावरण के अस्वस्थ होने पर हर एक जीव पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव हमेशा बुरा ही होता है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गंगा जो है वो दूषित हो चुकी है, चाहे यमुना भी दूषित हो चुकी है। अब सोचो इसकी दूषित होने से जो जीव जंतु हैं, जो पानी के अंदर में जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ या फिर जो टर्टल्स, कछुए, डॉल्फिन्स, ये अलग अलग मछलियाँ जो हैं, ये सभी क्या गंदे पानी में जी पाएंगी? नहीं जी पाएंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, पर्यावरण अस्वस्थ हो गया, हमारा जो पानी है, पानी का जो स्रोत है वो खराब हो गया, गंदा हो गया, दूषित हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो सभी के सभी मर गए और उन पर हमेशा बुरा प्रभाव ही पड़ा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रदूषण कम से कम फैलाएं। हर एक इंसान को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी तरफ से ज़्यादा प्रदूषण ना फैलाए, ताकि जो ओवरऑल मतलब कि पूरी रूप से देखा जाए तो हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। आम भाषा में आप प्रदूषण को दूषित वातावरण या फिर ऐसा वातावरण कह सकते हो जिसमें गंदगी फैल चुकी हो। तो अब आपको पढ़ने हैं कि जो प्रदूषण होता है वो किन किन कारणों से होता है, उनके क्या क्या अलग अलग कारण हैं। तो पहला है जल प्रदूषण। जल में प्रदूषण हो जा रहा है, इसी के वजह से हम उसको जल प्रदूषण कह देते हैं। दूसरा है वायु प्रदूषण। वायु में जो गंदगी फैल रही है इसलिए हम वायु प्रदूषण कह देते हैं। फिर है भू प्रदूषण, मतलब कि जो सॉइल होता है जब उसमें प्रदूषण हो जाता है तो उसको हम भू प्रदूषण कहते हैं। या फिर ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का ये मतलब होता है बच्चों, जब आप सुनते हो लाउड स्पीकर्स पे बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ जो बजती रहती है, या फिर जो हॉर्न बजते रहते हैं गाड़ियों के, वहाँ पर आप कभी गए होगे तो आपको ऐसा लगा होगा कुछ देर बाद कि आपके सर में दर्द होने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हम इंसान हैं हमें प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि हम ज़्यादा शोर बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हमारे पर्यावरण में जैसे ही शोर बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे ही एनर्जी बढ़ती जाती है जो हम लोगों के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी कहीं पर ड्रम बजते हैं तो वहाँ पर खड़े होना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है कि आजकल जो बच्चे हो रहे हैं उनमें बहुत जल्दी ही ऐसा हो रहा है कि उनकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत कम होती चली जा रही है। बहुत कम उम्र में ही बच्चे जो हैं वो कम सुनना शुरू कर देते हैं, या फिर जो बच्चे आजकल जन्म ले रहे हैं उनकी भी सुनने की क्षमता कम हो रही है। तो ये तो ध्वनि प्रदूषण के नुकसान है। उसके बाद अगला है ताप प्रदूषण। ताप प्रदूषण मतलब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, हमारी धरती का जो तापमान बढ़ रहा है उसके वजह से ताप प्रदूषण हो रहा है। अब तापमान क्यों बढ़ रहा है? तापमान इसलिए बढ़ रहा है कि जैसे जैसे हम जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं उनसे जो धुआं निकलता है, चाहे जो फैक्ट्रियों में से धुआं निकलता है, वो सभी के सभी धुएं क्या करते हैं, धरती के आसपास एक चादर सी बना देते हैं, एक धुएं की चादर बना देते हैं। उससे क्या होता है कि जो सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं ना, वो धरती पर ही ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं, और वो चादर जो होती है उन किरणों को वापस नहीं जाने देती। इसकी वजह से धरती जो है वो गर्म होती चली जा रही है। धरती बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारे जो हिमालयों के ऊपर में बर्फ़ हैं वो पिघल जाएंगी, और उन इलाकों में जो नीचे वाले इलाके होते हैं, जो ढलान वाले इलाके होते हैं ना, वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी, और वो सारे इलाके बह जाएंगे और बह कर पानी में वो दब जाएंगे। इसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, इसी समस्या को कहा जाता है। तो ताप प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारी धरती पर मंडरा रही। अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण या फिर आवरणिक प्रदूषण। तो बच्चों इसको समझने के लिए, इसके बारे में तो आप वैसे तो बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखो क्या होता है, हमारे जो पर्यावरण है उसमें कोयला और पेट्रोलियम जो है वो लिमिटेड है, मतलब कि बहुत कम है हमारे पर्यावरण में, बहुत ज़्यादा नहीं है। और हम क्या करते हैं, कोयले और पेट्रोलियम से ही एनर्जी पैदा करते हैं। अब इनसे एनर्जी कैसे पैदा होती है? जब कोयले को जलाते हैं या पेट्रोलियम को जलाते हैं तो उससे तापमान यानी हीट पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है, उसी को कहते हैं एनर्जी पैदा होना। तो क्या हो रहा है कि हम लोगों को पता है कि पेट्रोलियम और कोल जो है या कोयला जो है वो बहुत कम है। तो आजकल वैज्ञानिकों ने एक नया साधन ढूंढा है एनर्जी को पैदा करने का। उन लोगों ने क्या किया है, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, रासायनिक रिएक्शन जिनको कहते हैं वो करवाते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, उसी एनर्जी को स्टोर किया जाता है, और इसी जो एनर्जी पैदा की जा रही है रिएक्शन करवा के, केमिकल रिएक्शन करवा के, उन्हीं से पैदा होती है रेडियोधर्मी प्रदूषण या फिर आणविक प्रदूषण। तो इसमें क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन साथ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा कचरा भी पैदा होता है, और जो केमिकल रिएक्शन से कचरा पैदा होता है उसको कहा जाता है आणविक प्रदूषण। उसके बाद सातवां है सामाजिक प्रदूषण। तो हमने अभी अभी समाज के बारे में पढ़ा था, मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे हमारा रिश्ता कैसा है उसको कहा जाता है हमारा सामाजिक पर्यावरण। तो अगर उसमें प्रदूषण हो, मतलब कि लोग अच्छे से एक दूसरे से बात ना करें, या फिर लोग अच्छे से एक दूसरे से पेश ना आए, कोई किसी की मदद ना करे, बुरी भाषा का इस्तेमाल करे, तो कहेंगे कि समाज में प्रदूषण हो गया है, सामाजिक प्रदूषण हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर भू प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण को और अच्छे से समझना है। तो बच्चों देखो, हमारे भारत में, हमारे देश में क्या होता है, कृषि बहुत होती है, क्योंकि हमारा जो धरती है, हमारे भारत की धरती जो है वो उपजाऊ धरती है, काफ़ी अच्छी धरती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो कृषि करते हैं, फसल उगाते हैं और किसानी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो पॉपुलेशन यानी कि जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है, किसानों पर हमेशा एक दबाव होता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा कर देनी है। ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने की चिंता की वजह से किसान क्या करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, कीटनाशकों का, जीवाणु नाशकों का, या फिर अलग अलग जो उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक, उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सभी के सभी केमिकल से बनी चीज़ें हैं। इनसे आपको रिजल्ट यानी कि जो आपको वो तो अच्छा दिखेगा कि हाँ फसल बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन नुकसान ये होता है कि सॉइल के अंदर में आप केमिकल डालोगे तो कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद में सॉइल की जो उर्वरक क्षमता होती है, जो उसकी अच्छी मिट्टी की जो क्षमता होती है, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। मतलब कि सॉइल के अंदर क्या होता है, केमिकल मिक्स हो जाता है और धीरे धीरे सॉइल जो होती है वो प्रदूषित होने लगती है, मिट्टी ख़राब होने लगती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो ये रासायनिक चीज़ें हैं, रासायनिक उर्वरक चाहे कीटनाशक, इनका अगर हम कम से कम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, मिट्टी में कम से कम प्रदूषण होगा और हमारी फसलें जो होंगी वो केमिकल से रहित होंगी, केमिकल उनमें नहीं होगा। इन केमिकल्स का इस्तेमाल करने से नुकसान बस ये है कि क्या होगा, कुछ समय के बाद में जो आपकी मिट्टी उपजाऊ है, आप उस पर फसल उगा पा रहे हो, कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि वो पूरी की पूरी बंजर हो जाएगी, आप उस पर कुछ उगा ही नहीं पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि रसायनों का, केमिकल्स का आप जितना कम इस्तेमाल करो उतना ज़्यादा आपकी मिट्टी के लिए अच्छा है। तो हमने यहाँ पर तो पढ़ लिया बच्चों कि हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को नुकसान किन किन बातों से हो रहा है। अब हमको पढ़ना है कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाता है, पर्यावरण को बचा कैसे कैसे सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पर्यावरण में जो अजैविक घटक हैं और जो जैविक घटक हैं, दोनों मिलकर एक दूसरे को मदद करती हैं और फिर जाकर वो पर्यावरण को चलाती हैं, पर्यावरण को मुमकिन कर पाती हैं, पर्यावरण हमारे आसपास हो पाता है। इसीलिए क्योंकि जो अजैविक और जैविक घटक हैं पर्यावरण के, वो एक दूसरे की मदद करती रहती हैं और हमारे पर्यावरण को वो पॉसिबल बना पाती हैं। हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, चाहे जो जीव जंतु हैं, ये सभी मिल करके क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और फिर पर्यावरण बन पाता है। पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं, इन सभी का कुछ ना कुछ भूमिका होती है, ये सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं हमारे पर्यावरण में। इसलिए इन सभी का जीवन, इन सभी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि पर्यावरण जो है वो संरक्षित रह सके। अब हमें बच्चों यहाँ पर पढ़ना है कि राजस्थान ने क्या मुख्य भूमिका निभाई है पर्यावरण के संरक्षण में। तो बच्चों, राजस्थान ने क्या क्या किया है पर्यावरण संरक्षण के लिए, इसको समझने के लिए आपको दो उदाहरण दिए गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रमुख उदाहरण है, ये बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं। पहला उदाहरण है जोधपुर के खेजड़ली गाँव का। यहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ के उस वक्त के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने सैनिकों को कहा था कि उनको अपने किले में निर्माण कराने के लिए, उनको अपना किला बनवाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया था, अपने सैनिकों को बोला था कि खेजड़ली गांव से वो लकड़ियाँ जाकर लेकर आ जाएं। पर वहाँ जैसे ही वो सभी सैनिक पहुँचे तो उन्होंने देखा क्या हुआ कि जैसे ही वो लकड़ियों को काटने लग गए, पेड़ों को वो कुल्हाड़ियों से जैसे ही काटने लग गए, तो गांव के जो लोग थे वहाँ पर वो पहुँच गए और उन्होंने कहा कि इन लकड़ियों को मत काटो, इन पेड़ों को कच्चे में मत काटो, इससे क्या होगा कि बहुत नुकसान हो जाएगा पर्यावरण का। लेकिन सैनिक जो थे वो नहीं माने। फिर क्या हुआ कि उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था श्रीमती अमृता देवी। इनको जैसे ही ये खबर पड़ी कि वहां के सैनिक जो हैं जंगल के पेड़ों को काट रहे हैं, खेजड़ली गांव के पेड़ों को काट रहे हैं, तो वो वहां पर अपनी बेटियों के साथ में पहुंच गई और उन्होंने कहा कि इन पेड़ों को मत काटो, भले ही हमें मार दो लेकिन पेड़ों को मत मारो। और उन्होंने उस वक्त कहा था, सर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जाड़। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे सर काट दोगे और पेड़ छोड़ दोगे तो भी ये सस्ता सौदा है। मतलब कि उनको अपनी जान से ज़्यादा कीमती पेड़ों की जान लगी, इसीलिए उस वक्त उनके बलिदान को याद करते हुए आज भी हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो अमृता देवी नाम से एक पर्यावरण संरक्षण करने वाले लोगों को अवार्ड देती है जिसका नाम है अमृता देवी जी के नाम पर। उस वक्त जो सैनिक थे वो फिर भी नहीं माने और उन्होंने पेड़ काट लिए और साथ में उन लोगों ने उस गांव के करीब 363 यानी कि 363 लोगों को उन लोगों ने, सैनिकों ने वहीं के वहीं मार दिया। उस गांव में आज भी क्या करते हैं लोग, भाद्रपद सुदी दशमी को खेजड़ली गांव में वो लोग मेले का आयोजन करते हैं। और उस वक्त वो याद करते हैं कि जो जो बलिदान उन लोगों ने दिए थे, अपनी जान की बाजी लगा दी थी पेड़ों की रक्षा करने के लिए, उसको याद किया जाता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है यहाँ पर राजसमंद जिले के पीपलांत्री गांव के किरण निधि संस्था के कार्य के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, जो ये गांव है पीपलांत्री गांव, यहाँ पर एक निधि, यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम है किरण निधि। वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर वो लोग एक अभियान चला रहे हैं। उसके ज़रिए उन लोगों को क्या उन लोगों ने कर रखा है कि वहाँ के जितने भी गांव के लोग हैं, अगर उनके घर में बेटी का जन्म होगा, अगर पुत्री का जन्म होगा, तो उनके माँ बाप जो होंगे उनको क्या करना होगा, कहीं पर भी उनको 111 पेड़ लगाने पड़ेंगे। जैसे ही वहाँ पर पुत्री का जन्म होता है तो गाँव के लोग क्या करते हैं, 111 पेड़ लगाते हैं। और साथ में क्या करते हैं कि वहाँ पर वो लोग रक्षा सूत्र यानी कि रक्षाबंधन जो होती है, वह रक्षाबंधन के दिन वो लोग उसको राखी बांधते हैं पेड़ों को और कसम लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि वो लोग जीवन भर इस पेड़ की रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक बड़ा ही अनूठा सा प्रयास है जिसमें ये लोग पेड़ों की रक्षा करके पर्यावरण को संरक्षित कर पाते हैं। यहाँ पर आपको चित्र भी दिखाया गया है, पेज नंबर 183 में आप चित्र 17.3 देख सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि पीपलांत्री गांव में कैसे जो लड़कियां हैं वृक्षों को रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांध रही हैं। इसी तरीके से बच्चों हमें भी क्या करना चाहिए, अपनी तरफ से हमसे जो भी कुछ हो पाए वो हमें करना चाहिए ताकि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर पाएं। तो बच्चों आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, बाकी जो भी इस अध्याय में बातें रह गई हैं उनको हम अगली कक्षा में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी मैंने आज सिखाया है पढ़ाया है आपको उसको फिर से पढ़ लेना है, फिर से एक बारी उसको रिवाइज कर लेना है, और कहीं पर कोई दिक्कत आए तो आपको अपने टीचर से ज़रूर पूछना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।